शुरुआत नहीं है और कहीं जाकर के भी अंत नहीं होता। बस इतना अवश्य है कि अगर इसका शुरुआत नहीं है तो कोई अंत नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम चाहें तो अपने संसार चक्र को तोड़ सकते हैं। संसार चक्र तो चलता रहेगा, पर हम चाहें अगर तो अपने संसार चक्र से हम बाहर आ सकते हैं या उस संसार चक्र को तोड़ सकते हैं। यह इस आश्रय तत्व को समझने के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आश्रय कैसा है हमारे जीवन को दोषयुक्त करने या विकारी करने वाला है। इसलिए मुझे इस आश्रय तत्व को समझकर इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यही चीज इसमें समझने की, कौन से परिणाम करने से मेरे कौन से कर्म आते हैं और फिर उन कर्मों का मुझे कैसा कैसा फल भोगना पड़ता है, ये सारी चर्चा इसमें अपन करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। काय वांग मन कर्म योगः, मन वचन और काय की क्रिया का नाम ही योग है और सा आश्रव, और वही आश्रव भाषा बना दी। मन वचन काय से हम जो भी करते हैं उस सब के द्वारा कर्म आते हैं, इसी का नाम आश्रम। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम मन वचन काय की कोई क्रिया ना करते हो, इसलिए एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसमें कि हमारे कर्मों का आश्रय ना होता हो। निरंतर कर्मों का आश्रय चलता रहता है, दो प्रकार से होता है, भले कर्मों का और बुरे कर्मों का। जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं और पाप कर्म कहते हैं, उसी को पुण्याश्रय या पापाश्रय कहा जाता है। आश्रय तत्व के अंतर्गत ही पुण्य और पाप दोनों समझने के हैं। पुण्य क्या है? तो पुनाति आत्मानं पवित्री करोति इति पुण्यम्। जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य कहलाता है, और रक्षति पाप। आत्मानं शुभात इति पापम्, जो हमें शुभ से बचाए रखता है वो कहलाता पाप। हाँ, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि कोई कहता कि भी हमने पाप करे हुए तो उनको धोने हम मंदिर जाएं, हम कहते नहीं, ऐसा कहो तुमने तब पुण्य ही नहीं किया कि मंदिर जाने की सुध आए तुम्हें। क्योंकि पाप का उदय हमें भले काम करने से बचाए रखेगा, यही पाप की तासीर है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं। कह रहे हैं शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ योग हो तो पुण्य का आश्रय होता है, और अशुभ योग हो तो पाप का आश्रय होता है। जैसे कि एक कमरे में दो खिड़कियां हो, एक खुलती हो बगीचे की तरफ और एक खुलती हो कचरा घर की तरफ, तो बताइएगा जब आप कचरे घर के तरफ वाली खिड़की खोलेंगे तो कमरे में क्या आएगी? बदबू आएगी। और आप अगर उस तरफ बगीचे की तरफ वाली खिड़की खोलेंगे तो क्या आने वाला है? तो सुगंध आने वाली। ऐसे ही हम जिस तरह की मन वचन काय की क्रिया शुभ क्रिया करते हैं तो शुभ का आश्रय होता है, अशुभ करते हैं तो अशुभ का आश्रय होता है। सामान्य रूप से शुभ और अशुभ के लिए कितना ही आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ। जो योग शुभ भावों के द्वारा किया जाए वो शुभ योग है, और अशुभ परिणामों से जो योग होता है या मन वचन काय की क्रिया होती है अशुभ परिणाम के साथ, तो वो सब अशुभ योग कहलाता है। आश्रय दो प्रकार का है, एक कषाय से युक्त अवस्था में आश्रय होता है और एक कषाय से रहित अवस्था में भी आश्रय होता है, मन वचन काय की क्रिया अकेले से। तो दो विभाजन कर दिए, एक सांप्रायिक आश्रय है और एक एरियापथ आश्रय। वैसे दो भेद और हैं, एक द्रव्याश्रय है और एक भावाश्रय है। भावाश्रय कौन सा है? तो हमारे जो राग द्वेष परिणाम है वही भावाश्रय है, और राग द्वेष परिणाम से जो हमारे सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाएं आकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं वो सब, या कि सूक्ष्म कारमण वर्गनाओं का आना, वो तो सब हो गया द्रव्याश्रय। और जो परिणाम है हमारे क्रोध इत्यादि रूप, वे सब हैं भावाश्रय है। इस तरह भी, और यहां कह रहे हैं कि जो कषाय पूर्वक होता है आश्रय या कषाय के साथ होता है वो सांप्रायिक आश्रय कहलाता। संप्राय का अर्थ है कषाय, इसलिए कषायवान जीव के जो आश्रय है वह सांप्रायिक आश्रय है, और कषाय से रहित अवस्था में मन वचन काय की क्रिया से जो आश्रय होता है उसे एरियापथ आश्रय कहते हैं। क्या होता है कि मन वचन काय की क्रिया जिसको अपन योग कहते हैं और कषाय, इन दोनों के द्वारा ही आश्रय और बंध चलता है भैया। तो चार प्रकार का बंध है, आगे जाकर के अपन इस चीज को थोड़ा सा और समझेंगे, पर अभी संक्षेप में ताकि चीज समझ में आ जाए कि कषाय हमारे आने वाले कर्मों में स्थिति और अनुभाग तय करता है कि कितने देर तक ये कर्म रहेंगे और कितने देर तक ये अपना फल देते रहेंगे, और फल देते समय इनकी ताकत कितनी होगी, ये कहलाती स्थिति और अनुभाग। और किस प्रकृति वाले कर्म आए हैं और कितनी मात्रा में आए हैं, इसको कहते हैं प्रकृति और प्रदेश बंध। तो मन वचन काय की जो हलन चलन है, क्रिया है, उसके द्वारा तो प्रकृति और प्रदेश निर्धारित होता है, और कषाय के द्वारा स्थिति और अनुभाग निर्धारित होता है। तो जो कषायवान जीव हैं उनके स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश सब प्रकार से एक साथ निर्धारित हो जाता है, लेकिन जब कषाय नहीं होती जिन जीवों के, उनके जो आश्रय होता है मन वचन का एकीक्रिया से, उसमें स्थिति अनुभाग नहीं होने से कर्म आते हैं और चले जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। इसलिए इस आश्रय को ऐरियापथ आश्रय कहते हैं। ये ऊंचे गुण स्थानों में जहां मोह का और कहना चाहिए अभाव हो जाता कषाय का, वहां जाकर के, और ये ग्यारहवें गुण स्थान से ऐरियापथ आश्रय बनता है। आचार्य श्री हमेशा उदाहरण देते हैं कि ठीक ऐसा है ऐरियापथ आश्रय जैसे कि अपने घरों में और पानी के लिए बचाने के लिए टीन शेड वगैरह लगा देते हैं, खप्पर लगा देते हैं, उस पर पानी आता है और नीचे गिर जाता है, रुकता तो नहीं है। ठीक ऐसे ही कर्म आते हैं और बिना रुके बिना उसके फल दिए हुए और निकलते चले जाते हैं। ये एरिया पदाश्रो कहलाता है, उसी को कह रहे हैं सांप्रायिक। सकषाय कषायो सांप्रायिक एरिया पथियो कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से सांप्रायिक आश्रय और ऐरियापथ कर्मों का आश्रय करता है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच विंशति संख्या पूर्वस्थ भेदः। जो सांप्रायिक आश्रय है वो सांप्रायिक आश्रय कैसे होता है, तो पांचों इंद्रिय चार कषाय, अव्रत कितने हैं, अव्रतियां भी पांच हैं और क्रियाएं कितनी हैं, वो 25 क्रियाएं हैं। इस तरह से जो है ये सब आश्रय के कारण बनते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं, जो कि आत्मा का परिचय कराने वाली है वो इंद्रिय कहलाती है, और कषाय जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को पीड़ा पहुंचाए, जो आत्मा में कलुषता उत्पन्न करे, वो सब कषाय है। और व्रत किसे कहते हैं, तो पांच पापों से विरक्त होने का नाम व्रत है। और अव्रत किसे कहेंगे, पांच पाप में लगे रहना वही अव्रत है, तो ये पांच अव्रतियां हो गई। और क्रिया जो हम करते हैं 25 क्रियाएं हैं जिनसे कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का आश्रय होना संभव है। जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसा होगा। इसमें 25 क्रियाओं में एक क्रिया ही शुभ के आश्रय में विशेष कारण है, बाकी में तो अशुभ का ही आश्रय होता है। देखो इनके बारे में चर्चा तो करूं, जल्दी जल्दी कर दूंगा, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत इसमें मैटर बहुत है और समझने लायक है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि देखो सबको, श्रावक को भी और साधु को भी, तत्वार सूत्र के और अध्याय पढ़ो चाहे ना पढ़ो, छठवां और सातवां अध्याय हर साल कम से कम एक बार अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए महाराज, उससे हमारे परिणाम समझ जाएंगे कि देखो ऐसे करूंगा काम तो ऐसा फल मिलेगा। और एक श्रावक को कौन से व्रतों का पालन करना चाहिए, तो सातवें अध्याय में व्रतों की चर्चा की है, इसलिए दोनों बार बार अध्ययन करने के हैं। अपन फिर भी जल्दी करते हैं। एक सम्यक्त क्रिया कहलाती है, उसके बारे में लिखा कि जो चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है उसे सम्यक क्रिया कहते हैं। और वीतरागी के अलावा अन्य रागी द्वेषी को ही देव मानना, उनको गुरु मानकर उनकी उपासना करना, वो सब मिथ्यावर्धन वाली तो मिथ्यात् क्रिया है। और आने जाने से होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है वो कहलाती है प्रयोग क्रिया। और संयम की उपेक्षा करके असंयम की तरफ झुकाव होना, इससे जो मन वचन काय की क्रिया होती है वो समाधान क्रिया कहलाती है। और सावधानी पूर्वक चलने की क्रिया ऐरियापथ क्रिया कहलाती है। ये सब आश्रयों में कारण बनती है, शुभ और अशुभ दोनों, जैसे परिणाम होंगे वैसा। प्रादोष की क्रिया क्या है, कहते क्रोध से युक्त होकर के जो क्रिया की जाती है, आवेश में आकर के जो क्रिया की जाती है वो भी आश्रय कराने वाली है, वो प्रादोष की क्रिया कहलाती। और पाप भाव से युक्त होकर के कार्य करने का प्रयत्न करना, ये काय की क्रिया कहलाती है। और हिंसक उपकरणों का ग्रहण करना वो कहलाती है आधिकरण की क्रिया। और प्राणियों को पीड़ा देने वाली क्रिया करना वो पारी ताप की क्रिया कहलाती। ऐसी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, ये अपन हमेशा करते रहते हैं। और प्राणों का वियोग करने वाली क्रिया करना, ये प्राण्यतिपात की क्रिया कहलाएगी। सुंदर रूप देखने का अभिप्राय रखना खोटे परिणाम से, तो फिर वो दर्शन क्रिया कहलाएगी। और स्पर्श करने वाली वस्तु को स्पर्श करने की रागवश स्पर्श करने की भावना होना, तो स्पर्शन क्रिया कहलाएगी। और जितने भी इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री है, उसके नए नए एक से एक चीजें इजाद करना, हाँ नई नई कैसे भोग विलास की चीजें बढ़ाएंगे, कितनी चीजें आ रही हैं। आज अगर देखा जाए तो सारा ज्ञान इसी में लग रहा है, रंग बिरंगे पाउच में, और हर चीज पकड़ाई जा रही। आदमी को नहीं भी लेना हो तो आकर्षित होकर के ले लेता हो। ये सब पाप, ये प्रत्यय की क्रिया कहलाती है। आने जाने के रास्ते में अपना मलमूत्र इत्यादि विसर्जन करने से भी पाप होने वाला है, वो समंतानुपात क्रिया कहलाती है। और बिना देखे बिना सोधे चीजों को उठाना रखना, इससे होने वाली जो क्रिया है वो अनाभोग क्रिया कहलाती। दूसरे से करने वाली क्रिया को स्वयं अपने हाथ से करना, पहले तो दूसरे को कह दिया कि आप करना, फिर बाद में स्वयं करना, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, ये स्वहस्त क्रिया कहलाती। ये जो कार्य अपने करने योग्य नहीं है उससे करने बैठ गए। अब इसमें बहुत अभी तक कोई निश्चित नहीं हो पाया कि क्या उदाहरण देना चाहिए, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। निसर्ग क्रिया कहलाती कि पाप का जिससे समर्थन हो वो क्रिया, वो सब निसर्ग क्रिया कहलाती। दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया होती है, हाँ वो विदारण क्रिया कहलाती। इससे भी स्वयं को पाप का आश्रय होने वाला है। और शास्त्रोक्त क्रिया का पालन ना करके आज कैसा तो कर रहे हैं सब लोग, धर्म कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि सब लोग धर्म कर रहे हैं। धर्म तो शांति से भी होता है, नहीं होता? आए तो आप उसी के लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आप करें वैसा आप पाएंगे। शास्त्रोक्त क्रिया का पालन ना करके उसका अन्यथा प्ररूपण कर देना, अपन नहीं कर पा रहे हैं तो कह देना कि नहीं नहीं ऐसे ही होता है जैसा हम कर रहे हैं वो ही सही कर रहे हैं, जबकि अपन खुद गलती कर रहे हैं पर कह रहे हैं कि नहीं वो जो हम कर रहे हैं वही सब सही कर रहे हैं। ये आज्ञा व्यापादनी क्रिया कहलाती, जान बूझ करके आगम की आज्ञा के विरुद्ध करना और उसे सही मान के करना, हाँ। और आकांक्षा क्रिया क्या कहलाती, शास्त्रोक्त क्रिया का पालन तो करना लेकिन आदर पूर्वक नहीं करना, बिगार बेमन से करना, या अनाकांक्षा क्रिया है। आरंभ क्रिया पाप क्रिया स्वयं करना, दूसरा कोई करे तो शाबाशी खुश होना, बहुत अच्छा किया आपने, पाप क्रिया खुद भी करी दूसरे का भी समर्थन कर दिया। परिग्रह, परिग्रह नष्ट ना हो जाए इसके लिए हमेशा चिंतित रहना, हाँ सब चिंतित रहते हैं हमारे पास जो जो चीजें हैं वो नष्ट ना हो जाएं, उनका संग्रह उनका संचय करने में लगे रहते हैं, ये परिग्रह की क्रिया कहलाती। ज्ञान और दर्शन के विषय में छल कपट करना, हाँ ये सब माया क्रिया है। और मिथ्या दर्शन का पोषण करने वाले लोगों की प्रशंसा करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। और त्याग के परिणाम नहीं होना, हमें नहीं करने त्याग तुम्हें करो, ये कहलाएगी अप्रत्याख्यान क्रिया। इससे भी पाप का आश्रय फोकट में बैठे बैठे हो रहा, नहीं करने से न करो, मगर त्याग के परिणाम दूसरे के हो रहे तो उसको भी कहेंगे कि नहीं त्याग त्याग नहीं करना अपने को, ने हम कर रहे ने आप करो। ऐसी 25 क्रियाएं हैं। अब देखिएगा फिर कह रहे हैं कि आश्रय भी कैसे होता है, अलग अलग जीवों को अलग अलग भावों से होता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्त विशेषः, तीव्र भाव से किया जाएगा कोई भी मन वचन काय की क्रिया तो अलग आश्रय होगा, मंद भाव से किया जाएगा मंद कषाय पूर्वक किया जाएगा तो अलग होगा, और ज्ञात भाव से जान बूझ करके कि मैं इसे मारूं ऐसा जान करके फिर मारने की क्रिया करना, ये ज्ञात भाव है। मेरे तो भाव नहीं थे लेकिन मेरी क्रिया से दूसरे को कष्ट पहुंच गया, ये अज्ञात भाव है, इसमें कमती पाप लगे। इसलिए तो हम आपसे कहते हैं कई बार के अपन को नहीं मालूम कि फलानी चीज कैसी है, तो उसमें तो पाप लगे गई अज्ञानता पूर्वक की है, और फिर जान करके फिर करना तो और ज्यादा पाप लगे। नहीं जानते हैं तब भी पाप, और जान करके करेंगे गलत क्रिया तब भी और ज्यादा, ज्ञात भाव और अज्ञात। ऐसा नहीं समझना कि जिनको मालूम नहीं उनको पाप ही नहीं लगेगा। हम कौन जानते हैं कि जीव किसे कहते हैं, इसलिए हम जीव की हिंसा करें तो हमें कोई पाप नहीं कहते। अज्ञात भाव उससे भी पाप लगेगा, आप जानते हो तब भी लगेगा। और अधिकरण, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। अच्छा देखो, भगवान की फोटो देखो तो अलग मन होता है, हैं? और किसी हिंसा करने वाले की फोटो देखो, बंदूक लिए हुए किसी को देखो तो अलग परिणाम। ये अधिकरण कहलाता। ऐसे अधिकरण से अपने मन में भाव उठने से अपने शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता। तो सबस्टेटम जिसको कहते, जैसा अधिकरण होगा वैसा हमारे परिणाम होंगे और वैसा आश्रम होगा। और वीर शक्ति, हाँ, जिसकी जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा वो पाप कर सकता है और उतना ज्यादा पुण्य भी कर सकता है। जैसे हमने आपसे कहा था कि सात में नरक में कोई नहीं जा सकता, इतनी शक्ति ही नहीं है, शक्ति भी चाहिए। और ऐसे ही स्वर्ग से, सोलहवें स्वर्ग से ऊपर आज कोई नहीं जा सकता। क्यों? यहाँ की बात कर रहे हैं भरत और अरावत की, वहां विदेह की नहीं लगा लेना आप। यहां से तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि उतनी शक्ति ही नहीं, उतना वीर्य शक्ति भी चाहिए आश्रय के लिए। इस तरह से ये आश्रय में भेद पड़ जाते हैं, जैसे भाव होंगे वैसा। अधिकरणम जीवा जीवा। अब थोड़ा डिटेल करते हैं अधिकरण को। अधिकरण क्या है? तो दो दो प्रकार का है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरंभ योग कृतकारतानुमत कषाय विशेष त्रिस्त्रिस्त्रिस्चतुश्चैकशः। इसमें पहला जो जीवाधिकरण है उसमें कितने भेद हैं, इसी के बन जाते हैं 108 भेद बन जाते हैं जीवाधिकरण के। देखो, संभ्रम्भ समारंभ आरंभ और मन वचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। हो गया, ये इसी का है, ये अनुवाद हो गया पूरा का पूरा। इस प्रकार से ये 108 भेद हो जाते हैं जीवाधिकरण के। संभ्रम मतलब प्लानिंग करना, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, फिर प्लानिंग करने के बाद अब जैसा करना है वैसा मटेरियल इकट्ठा करना, ये समारंभ। और फिर एक्शन आरंभ, फिर शुरू कर दिया करना। ये कोई भी काम करते हैं तो पहले प्लान करते हैं, फिर मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर एक्शन शुरू कर देते हैं। ये संभ्रम समारंभ आरंभ, मन वचन काय से करेंगे, खुद करेंगे दूसरे से कराएंगे या करने वाले का समर्थन करेंगे। कृतकारित अनुमोदन हो गए, कोई ना कोई कषाय होगी, क्रोध मान माया लो सबको गुणा कर दो, तीन में तीन का, फिर तीन का और चार का, कितने हो गए 108। इसलिए तो माला में भी 108 दाने रखे हैं। मैं एक एक बार नमोकार बोल करके एक एक पाप के द्वार को रोक रहा, हाँ, पूरी माला फेर करके मैं 108 द्वार जो पाप के आश्रव के उनको बंद करता हूँ, भली क्रिया कर रहा हूँ। और अजीवाधिकरण क्या है? तो निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। ये निर्वर्तना दो प्रकार की होती है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। और निक्षेप चार तरह के होते हैं, संयोग दो प्रकार का है, और निसर्ग जो है वो तीन प्रकार का होता है। इनके बारे में थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, पांचों जो शरीर हैं, मन वचन का है, श्वासोच्छ्वास है, इनकी जो अंतरंग रचना है वो जीव के शुभ अशुभ क्रिया में उपयोगी होकर के आश्रयों का कारण बन जाती है, इसे मूल गुण निर्वर्तना कहते हैं। निर्वर्तना का अर्थ है रचना। और दूसरा जो प्रतिमा है, काष्ठ कर्म है, पुस्त कर्म है, चित्र इत्यादि बनाते हैं, इनके बनाने को उत्तर गुण निर्वर्तना कहते हैं। इसमें भी पाप का आश्रय और पुण्य का आश्रय दोनों प्रकार का। मुझे कई बार लगता है कि देखो, एक कारीगर 5-स्टार होटल बना रहा और एक कारीगर भगवान का मंदिर बना रहा, हाँ बनाना दोनों में चल रहा उसका, लेकिन उसके परिणाम अगर बनाते समय कि मैं तो भगवान का मंदिर बना रहा हूं, तो वो उसके लिए शुभ का कारण बन जाएगा, शुभ आश्रय का। और होटल इत्यादि उसमें तो क्या पाप ही होना है बाद को, तो उसमें तो उसको और अधिक किस तरह की निर्वर्तना में और पाप का आश्रय। ऐसा होता है, अपन को इसलिए क्रिया करते समय बहुत विचार करना चाहिए कि कौन से परिणाम से क्रिया कर रहा हूं, उसका अलग अलग आश्रय होता। निक्षेप बिना देखे हुए जमीन पर रख दी किसी वस्तु को, वो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है, देख करके भी ठीक संशोधन नहीं किया और रख दी तो दुष्प्रमाणित निक्षेप कहलाता, बिना सोधे बिना देखे हड़बड़ी में होता, औली में कई बार सामान रख देते हैं, ये मंदिर वगैरह में भी, अपने पूजा के उपकरण इत्यादि में भी ये सब लगा लेना भैया, और घर गृहस्थी में तो है ही, यहाँ पर भी इनको भी जल्दी से होता औली में, हरी पिपलियन ऐसा जल्दी में रख दी तो उसमें भी एक ये दोष लगेगा, सहसा निक्षेप और उपयोग के बिना ही चीज को कहीं रख देना, ये सब अनाभोग निक्षेप कहलाता है। संयोग दो प्रकार का होता है, भक्तपान संयोग होता है और उपकरण संयोग होता है, जो प्रतिकूल अन्न जल इत्यादि है उनको मिला करके खाना, इसमें भी आश्रय होएगा बताइएगा। और उपकरण पात्र है, पीछी कमंडलू आदि है, कैसे मालूम? अब मान लो हम धूप में बैठे हैं और धूप में बैठे तो हमारी पीछी गर्म हो गई, अब वहां रखा है कमंडल छाया में, तो हम वहां झट से जाकर के अगर कमंडल के ऊपर इसी पीछी को गर्म को लगा देंगे तो ये हमारे लिए दोष का कारण बन गया, क्योंकि ये गर्म था और कमंडलू तो ठंडा था, दोनों का संयोग कर दिया आपने। इसी तरह कच्चा पानी और गर्म किया पानी दोनों मिक्सअप कर दिया आपने, ये हो गया भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग, इससे भी कर्म का आश्रय होता है, निरंतर आश्रय होता रहता भैया। इस तरह से देखा जाए तो शरीर की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, ये निसर्ग कहलाता है तीन प्रकार का। अब आ गए अपन, जो मुझे मुख्य रूप से बताना है, ये तो सब चीजें हो गई, कौन से भावों से कौन से कर्म बनते हैं, इसी के लिए किताब मंगाई है। थोड़ी सी देर हो जावे तो आकुलता नहीं करना, या कि हो सकेगा तो मैं नहीं पूरा हो पाएगा तो कल भी बता सकूंगा, पर इसको बताना तो अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बार बार इस चीज का अवसर आता नहीं है, पर्यूषण में ही अपन कर पाते हैं, बाकी तो फिर कौन को फुर्सत है, अब अभी नहीं है बहुत जनों को फुर्सत, मगर जो उनको है उनको तो कम से कम हो ही जावे। हाँ, फिर भी अपने थोड़े परिणाम तो समझ जाएंगे, याद आ जाएगा कि भैया अपन को ये नहीं करना, नहीं तो अभी खोटे कर्म बंधेंगे, इतना भी हो जाए तो काम हो जाएगा। तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म कौन से भावों से बंधते हैं? हमारा ज्ञान कमती है महाराज, हमारी आंख में रोशनी कम हो गई तो कैसे हो गई, कछु ऐसी पूर्ण कर तो दई नहीं है फोकट में, हमारे ही परिणामों से हो जाती है। कौन से परिणाम? तो सबसे पहले कह रहे हैं तत्प्रदोष, तत्व चर्चा के समय तत्व ज्ञान और ज्ञानी के प्रति भीतर ही भीतर ईर्ष्या करना। हाँ, जब अच्छी चर्चा चल रही तो अब इनसे सहन नहीं हो रही, इतना बढ़िया प्ररूपण कर रहे हैं, अरे कछु नहीं, ये तो सब बातें बातें हैं, और बैठे हैं सुन रहे हैं लेकिन मन ही मन क्या है, अब सहन नहीं हो रहा, अच्छी चर्चा चल रही तत्व की लेकिन भीतर कार्य कछु नहीं, मैं कधर हूं कछु नहीं, ऐसा कह देना इससे अपना ज्ञान ढकेगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अच्छे ज्ञान में और ऐसी मन ही मन उससे अच्छे ज्ञान से और भीतर भीतर और अपने भाव खोटे कर लेना। निन्नौ ज्ञान की चार बातें कोई पूछे तो मालूम होते हुए भी नहीं बताना, क्यों? दूसरे को मालूम पड़ जाएंगी तो वो ज्ञानवान हो जाएगा, इसलिए नहीं बताते। या फिर जिससे सीखा है उसका नाम नहीं बताना, किताब का नाम नहीं, आपने जी किससे सीखा, बहुत अच्छी बात है, हमने तो अपने आप सीखी, अरे वाह, आ गया अहंकार। हाँ, ये जो है निन्नौ कहलाएगा, ज्ञान के साधन को छुपाना नहीं, बता देना मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैंने इस शास्त्र से सीखा है, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं तो ज्ञान ढकेगा और अधिक। और कहते हैं मात्सर्य, जानकारी होते हुए ईर्ष्यावश दूसरे को नहीं देना ये भाव कि दूसरा हमसे ज्यादा ना जान लेवे। निन्नौ में तो भाव छिपाने का है, इसमें नहीं बताने का। हाँ, इसलिए मात्सर्य और निन्नौ में थोड़ा सा अंतर है, अंतराय ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के साधन में बाधा डाल देना,
हाँ कैसे बाधा डालते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, आओ अपन घूम के आ जाएं, एग्जाम तो चल रहा है और दूसरा अच्छा पढ़ने वाला है, आओ अपन घूम के आते हैं। और सुनो आज तुम्हारी तरफ से तुम फिल्म भी देखना चाहो तो दिखा देंगे, क्यों? उतनी देर पढ़ नहीं पाएगा तो बढ़िया रहेगा। इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है, ये अंतराय है, बिजली गायब करवा दी, लालटेन फोड़ दी, किताब फाड़ दी, किताब छुपा दी, ये सब ज्ञान के साधन। अरे का धरो है पढ़वी में, बंद करो, चलो तो अपन चर्चा करें कछु, बहुत कर लो स्वाध्याय जी, क्या है? अरे महाराज आप दिन ही भर पढ़त रहे थो, तनक हमसे तो चर्चा कर लू। हाँ आप हमारे ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं, अब आपके ज्ञानावरणी बंधेगा। ज्ञान की आराधना में आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे को और कहना चाहिए, का फुर्सत बैठी राग द्वेष की बातें कर रहे, निकारो किताब, बांचो कम से कम, राग द्वेष कम हुई है। हाँ ये ज्ञान के आसाधना अंतराय डालना है उसमें, दूसरे के उसमें अध्ययन में, और आसाधन दूसरे के द्वारा दी जाने वाली जानकारी का आदर ना करते हुए शरीर और वाणी दोनों से ही निषेध करना। ऐसे जो है बाजू में बैठा हुआ कोई अच्छी गौर से सुन रहा है और अपन को मन ही नहीं लग रहा हो अपनों, तो सुनते हुए उसको कहा तुम कछु हम अब भीतरे भीतरे उनके इस तरह से चर्चा रहता हुआ अपने। कई लोग हमने देखा, एक दिन हमें टोकना पड़ा, इधर तो हम चर्चा कर रहे हैं बढ़िया बात तो सुने ने, अपनी आपस में लगी उनकी चर्चा, ये क्या है? देख करके दुख होता है कि अज्ञानतावश कैसे कर्म बांध रहे हैं अपने, तत्व की चर्चा नहीं सुन रहे, दो बातें जो सुनाई जा रही वो नहीं सुन रहे, आपस में ही चर्चा में लगे हुए हैं, ये सब आसाधना है ज्ञान की। और उपघात, सही ज्ञान में भी दोष लगा के उसे गलत साबित कर देना, ये आसाधना और उपघात हो गया। आसाधना में तो अनादर किया था और उपघात में तो ज्ञान का नाश ही कर दिया। भैया अब अपने परिणाम देख लो कि ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण कैसे बनते हैं, ये तो संक्षेप में हो गया। तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलन स्वामी तो बहुत अधिक डिटेल में कहते हैं, वो भी पढ़ लेना चाहिए, कैसे बनती है ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, क्यों नहीं होता ज्ञान, क्यों नहीं मिलती है इंद्रिय की सामर्थ्य। देखो आचार्य और उपाध्याय महाराज के प्रतिकूल चलना, उनकी आज्ञा न मान के अपनी मनमानी चलना, हाँ अब गौर करते जाना एक एक। अकाल में स्वाध्याय करना, जिन कालों का निषेध किया है उन काल में स्वाध्याय करना है। अब पंडित जी ने बन जाइए तुम उतर भी देखन लगे कि अकाल में हमने बहुत विचार कर लो कि तत्वार सूत्र ये समय पे बांचो चाहिए कि नहीं। हाँ मन में आ सकता है ये भाव कितने बजे से बांच रहे हैं, ये सामायिक का काल है, का अध्ययन नहीं कर रहे उनकी व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम पहले नंबर सोच चुके, इसलिए आपका ध्यान उधर चला गया था पंडित जी महाराज, अश्रद्धा। भावी पंडित जी हैं वे बनने वाले, अश्रद्धा, क्योंकि जैसे ही हमने कहा अकाल तो हमने कहा आप देख लो महाराज जी कह तो रहे वाणी से, मनो खुद भी वही कर रहा है, बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है व्यक्ति का। अभ्यास, ज्ञान के अभ्यास में आलस करना को करे, अब पढ़ तो लो हमने अब बहुत होगा, अच्छी बात। अनादर पूर्वक अर्थ सुनना, तीर्थ उपरोध, दिव्य ध्वनि के समय उते भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही और इते स्वयं व्याख्यान करने बैठ जाना, ये भी है। अब आज वर्तमान में तो नहीं है, इसमें ये हो सकता है कि जैसे अपन ये दिव्य ध्वनि कई तो प्ररूपण है एक तरह से कहा जाए, जो चल रहा हो और वे उतर पीछे बैठे अपनी गप सड़ा का उनकी चल रही है कि नहीं, ये भी इसी में आ गए, ऐसा ले लो उसमें तो ज्ञान ढकेगा। बहुश्रुत पने का अहंकार करना, मिथ्या उपदेश देना, और बहुश्रुतवान का अपमान करना, ज्ञानवान का अपने पक्ष का दुराग्रह करना कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, और सपक्ष के दुराग्रह वश असंवृत्त प्रलाप करना, कुछ भी बोल जाना, फिर ध्यान नहीं रहता जब अहंकार आता कि नहीं जो मैं कह रहा हूं सिद्ध करके रहूंगा कि यही है सच, सूत्र के विरुद्ध वचन बोलना, असिद्ध से ज्ञान की प्राप्ति करना, असिद्ध से जिसको कुछ नहीं मालूम उससे ज्ञान हासिल करना है, शास्त्रों से आजीविका चलाना, शास्त्र का विक्रय करना, हिंसा आदि, ये सब ज्ञान आवरण के कारण हैं। और आंखें फोड़ देना, इंद्रियों की विपरीत प्रवृत्ति करना, दृष्टि का गर्मा, आंख तो बहुत अच्छी है, मैं तो चश्मा ही नहीं लगा, तो अहंकार ने करो नहीं तो भ्याने लग जे है। हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म बंधेगा। बहुत सोना, दीर्घ निद्रा और दिन में सोना, इससे भी दर्शनावरणी कर्म। आलस, हमेशा आलस बने रहना, नास्तिकता, भगवान में श्रद्धा नहीं रखना, सम्यक दृष्टि में दूषण लगाना, ये बहुत प्रवृत्ति चल पड़ी है। और कुतीर्थों की प्रशंसा करना, हिंसा करना और मुनि जनों के प्रति घृणा का भाव रखना, देख लो दर्शनावरणी कर्म बंधेगा। हम आपके लिए ये चीजें इसलिए सुना रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो याद रह जाएं, तो याद आ जाने पर अपने परिणाम थोड़े संभल जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं है। दुख शोक तापा क्रंदन बल परिदेव नान्य आत्म परो भय स्थान अन्य सद्वेद्यस्य, स्वयं और दूसरे में या दोनों में दुख करना, शोक करना, ताप करना, आक्रंदन करना, बध के परिणाम होना या परिदेवन अपवाद लगा देना, ये सब असाता वेदनी के कारण हैं। आश्रव के दुख क्या है? पीड़ा का अनुभव होना दुख है। दुख की बहुत वैरायटी है, स्वयं पीड़ा का अनुभव कर रहे वो तो दुख है ही, और अपनी प्रिय वस्तु या उपकारी वस्तु का वियोग होने पर उसके खोने से जो उदासी आ जाती है वो कहलाता शोक, सौरव फील करना है, उससे भी असाता बनती है। हाँ, ये ध्यान रखना। और ताप, झूठा आरोप लगाने से उत्पन्न होने वाली जो मानसिक पीड़ा है उसे ताप या संताप कहते हैं। कोई अगर अपने झूठा दोष लगा देवे तो कैसा मन में संताप होता, कहते संताप ने करो, समता धारण करो, नहीं तो और असाता बंधेगी। असाता के उदय में तो जो है स्वभाव है, और अधिक संताप करोगे तो और अधिक असाता बनेगी। बड़ी सावधानी का काम है। और आक्रंदन, विलाप करते हुए रोना, ये आक्रंदन कहलाता है, इससे भी असाता बनती है। और बध करना, दूसरे के को चोट पहुंचाने का भाव, आघात, मारा तो नहीं है लेकिन ऐसी बात कहती जिससे कि उसको बहुत तीव्र चोट पहुंच गई, तो वो कहते ये बध कहलाएगा। परिदेवन, अपने प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाने पर उसके गुणों का स्मरण करते हुए रुदन करना, जिससे दूसरे को भी रोना आ जाए। अब तो बहुत कम होगा, नहीं तो पहले बैठ भी पजोखो कहा तो पजोखो कर भी जाने पड़त, तो कि अब उनके नहीं रह जाए सोपन, चलो बैठ या में, और फिर बैठ के लौट के आए सुकन ले गए तो हतु मैंने भी रो ही नहीं गया कही। उनको कचु दुखा ही नहीं गया, मैंने रो में और असाता बांधे, अगर तू नहीं चाहे तो और रू करके और असाता बांधने की, इसलिए हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को, दूसरे के परिणाम और उसमें मैंने असाता बांधने के योग। दुख होना अलग बात है, लेकिन ऐसा विलाप करना दूसरे को भी जो है उससे दुख पहुंचे, इस तरह ये सब बाह्य हैं। अंतरंग में तो संक्लेश परिणाम है, वो संक्लेश परिणाम ही वास्तव में हमारे असाता का कारण है, और विशुद्धि परिणाम हमारे साता का कारण है। और भी जो है इसमें असाता के कारणों पर विचार किया हुआ है, वो लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए इसमें कोई विशेष बताने की बात है क्या? है, थोड़ी सी है। वो ये है, अशुभ प्रयोग करना, दूसरे पर अपवाद लगाना, ईर्ष्या करना, अनुकंपा नहीं करना, दूसरे पर करुणा नहीं करना, दया नहीं करना, पर परिताप करना, दूसरे के अंगोपांग का छेदन करना, भेदन करना, ताड़न करना, त्रासन करना, तर्जन करना, भर्त्सना करना, ये सब चीजें हैं। वो तक्षण तराशना, उसको विध्वंस कर देना, बंधन करना, रोधन करना, रोक लेना किसी को भी उसके भोग उपभोग की सामग्री, गाय भैंस वगैरह के बहुत होती है, इस तरह अपन उनको बांध देते हैं। मर्दन करना, दमन करना, विहेड़न रेपन शरीर को रूखा कर देना, पर निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, संक्लेश बढ़ाना, जीवन को लापरवाही से जीना, हाँ ये बहुत बड़ा कारण है। ख्याल ही नहीं है कि काय को जी रहे का करने हैं, बस अपने खा पी लो, सवेरे से उठे सो खाओ पियो, शाम रात भई से सो गए, दिन में कछु काम कर लो, चलो चल रहो चल दो कैसे भी निकल जाए जीवन, ऐसा ये सब क्या है, जीवन को यूं ही बर्बाद कर देना, लापरवाही से निर्दयता होना, हिंसा करना, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, विश्वासघात करना, कुटिलता करना, पाप कर्म से अपनी आजीविका चलाना, जैसे कि आतिशबाजी का धंधा कर रहे हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, फिश फार्मिंग खोल रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, इस तरह की ये सब चीजें जो है पाप कर्म से आजीविका चलाने से असाता बनेगी। कर रहे थे साता खों के कछु थोड़ो पैसा हो जाए सो साता हो जाए है, मनो देख लो क्या कर रहे हैं अपन, पैसे नहीं होएंगे बल्कि असाता और बनेगी, सो और चले जाए हाथ में आन करके और विष मिला करके देना, बाण जाल पाश रस्सी पिंजरा, ये सब हिंसा के साधन, इनका उत्पादन करना, जबरदस्ती दूसरे को शस्त्र दे देना, तुम तो लाइसेंस बनवा लो बंदूक को, हाँ अब वो पहचाने नहीं है, मनोज जी कह रहे कि हम तुम आओ लिख के दे दे सो बंदे तुम आओ, अच्छो रहे थे रखने में, अब आज का समय खराब होगा, हाँ जी उपाय अच्छी बताए उसको, असाता की ओर नहीं आने हो, असाता तो उसके और असाता और आ जावे उसके ऐसे कर्मों से हैं, और दुख आदि पाप मिश्रित भाव होना ये सब असाता के बंध के कारण है। भूत वृत्ति अनुकंपा धान सराग संयम आदि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य, प्राणी मात्र के प्रति दया और अनुकंपा का भाव रखना अपने साता वेदनी का बंध होगा। पैसा कछु लगने नहीं है, बताओ सब जीवों पे दया, बस इससे अपने साता बनेगी और व्रति जनों के प्रति विशेष रूप से अनुकंपा, त्यागी व्रति को देख करके और गदगद हो जावे, अरे वाह बहुत अच्छा आपने इतना त्याग किया, हमारा रात्रि भोजन का त्याग बहुत अच्छा, पीठ थपथपाने का मन हो जाए कि बहुत अच्छा किया, पैसा जो है इससे अपने साता बंधेगी भैया, और दान इत्यादि में हमेशा हर्ष पूर्वक तैयार हो जाना, हाँ ले लो अब देने पड़ रहो ऐसा नहीं, ले लो हमारे पास है ले लो, दान देने में हर्षित होना ये सब साता वेदनी के बंध का कारण है, और सराग संयम इत्यादि का जो पालन अपन करते हैं अनुव्रत और महाव्रत का वो सब, और शांति शांति मतलब ज्यादा क्रोध इत्यादि नहीं करना, प्रशम भाव रखना, क्षमा भाव रखना, कोई की गलती हो जावे तो उसको जल्दी से क्षमा कर देना और जल्दी से क्षमा मांग लेना दूसरे से, ये जो है शांति, और शौच शौच मतलब निर्लोभ, देखो अपन सोचते हैं कि लोभ करके जोड़ जोड़ के रख ले हैं पैसा सुसाता रहेगी हैं, और जीता कह रहे कि जितना निर्लोभ हो गए उतनी साता, हाँ निर्लोभी व्यक्ति के साता हमेशा रहती, और जिसको जितना लोग है वो तो अपने हाथ से असाता का उपाय कर रहा है वो, इसलिए ये विचार करना चाहिए अपने को इसमें है। इसमें बहुत अच्छा लिखा, अरंत भगवान की जो पूजा करते हैं, बाल वृद्ध और तपस्वी जनों की सेवा करते हैं, और बहुत सरल परिणाम है, विनयशीलता है, ये सब साता वेदनी के आश्रय के कारण है। इसके अलावा और बता दिए इसमें, केवली श्रुत संग धर्म देवावरण वादो दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनी कर्म बांधने हुए अगर तो जो उपाय करो, क्या मतलब दर्शन मोहनी कर्म तक केवली अवर्ण बात क्या, महापुरुषों में जो दोष नहीं है उनमें वे दोष बताना, ये कहलाता अवर्णवाद, हाँ महापुरुषों में जो दोष नहीं है वे दोष बना बताना, ये अवर्ण बात, जैसे केवली भगवान को भोजन करना पड़ता है ऐसा कहना, देव ये केवली भगवान का अवर्णवाद हो गया, और श्रुत का अवर्णवाद क्या कहलाएगा, श्रुत तो वो है जिसमें कि अहिंसा का वर्णन किया हो, लेकिन ऐसा कह देना कि नहीं मांस भक्षण करने को अच्छा बताया है ग्रंथों में, हिंसा करने को भी अच्छा बताया है, ऐसा ऐसा कह देना शास्त्र के बारे में, ये सब शास्त्र का या श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा, संघ का। साधु जो करते हैं वो अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन ये क्या कह देना कि अरे ये तो देखो अभी इतना दुख उठा रहे हैं, जब तो आगे भी उठाएंगे, और बड़े गंदे रहते नहाते तक नहीं है, ऐसा जो है साधु के ऊपर दोष लगाना, ये साधु का अवर्णवाद है, संघ का अवर्णवाद जिसको कह लो। और अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है उसे ना मान करके और उसका निषेध करना, ये धर्म का अवर्णवाद कहलाएगा। और देवों का अवर्णवाद क्या है, अरे देव लोग तो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नहीं वे तो मानस आहार करते हैं, कितने भी निकृष्ट देव क्यों ना हो उसके इस प्रकार का आहार खोटा होता ही नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे दोष निकाल लगा देना, ये सब इससे क्या होगा, दर्शन मोहिनी कर्म बंधेगा, इससे फिर अपन को संसार से पार होने का कोई उपाय नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म ऐसा है जिसके अभाव होने पर ही संसार का अभाव हो सकता है, इसलिए बहुत इससे बचना चाहिए। इसमें इतना ही दिया हुआ है और विशेष इसके बारे में नहीं दिया। अब चारित्र मोहिनी कर्म कैसे बनता, कषाय कैसे बंधती है, ये देखो अपन कषाय कैसे करते, वो तो कषाय के उदय में करते हैं, पर बंधती और नई कैसे है, तो कहते कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से आत्मा के जो तीव्र परिणाम हो जाते, थोड़ी तो पहले गुस्सा आई और अपन ने अपनी तरफ से और कर ली, बस इतना ही है, कर्म के उदय में थोड़ी तो गुस्सा आई और अपन ने और उसको बढ़ा लिया और तीव्र हो गए, चीखने चिल्लाने लगे, मार पीट करने लगे या अपना सिर दीवार से मार दिया, ये सब क्या है, ये सब और अधिक कषाय के बंध का कारण है, इससे बचना चाहिए। स्वयं कषाय करना, दूसरे में कषाय और उत्पन्न करना, और क्या कह रहे हैं, तपस्वी जनों के व्रतों में दूषण लगाना, इससे भी चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। संक्लेश उत्पन्न करने वाले व्रत और वेश धारण करना, मैं हमेशा कहता हूं व्रत नियम उतने ही धारण करो जिससे कि विशुद्धि बनी रहे, संक्लेश करने के लिए व्रत नहीं है, संक्लेश होने लगा तो इससे चारित्र मोहिनी और बंधेगी। सच्चे धर्म का उपहास करना, हंसी उड़ाना, गरीबों का मजाक उड़ाना, बहुत बकवास करना, हंसी ठट्टा करना, ऐसा लिखा सीधा सीधा, हाँ मजाक लन हमेशा, इससे जो है हास्य कर्म बंधता है भैया। व्रत और शील के पालन में रुचि नहीं होना, और विविध प्रकार के राग रंग में रुचि है, इससे रति नाम रति नो कषाय बंधेगी, दूसरे को दूसरे के बारे में उल्टा सीधा भिड़ा करके उससे उसकी घृणा करवा देना, इससे भी जो है अरति, और पापी जीवों की संगति करना, इससे भी अरति नो कषाय बंधेगी। स्वयं शोक करना, दूसरे को कराना, इससे शोक नो कषाय बंधेगी। स्वयं भयभीत रहना और दूसरे को भी डरवाए रखना, हाँ दूसरे को भयभीत करना, इससे अपने लिए भय कषाय। भले कामों में आचरण करने में ग्लानी करना, अपने तो गुण बताना, दूसरे के अवगुणों को उघाड़ना, ये जुगुप्सा इससे बनती है। झूठ बोलने की आदत होना, दोष देखने की आदत, उनको अच्छे दिखाते ही नहीं है, हाँ कोई के भीतर उनको हमेशा जो है, अब जैसे दुर्योधन महाराज जावे अगर तो कौन भलो आदमी नहीं मिलो संसार में, दुर्योधन महाराज को मिल ही नहीं सकते, और अगर युधिष्ठिर महाराज जावे तो उनको कौन खोटो आदमी नहीं मिलो, सभी अच्छी मिलेंगे, ये जो है क्या है, आदत ही बन गई। हमने कहना चाह रहे थे लेकिन अब बात आ गई है, मालूम इससे क्या बंधता है, स्त्री वेद का बंध होता है, बार बार पूछ रहे थे और हम बच रहे थे, और भी बहुत से हैं, अब ने बताएं बाकी, वो तो धोखे से बता गए हम। मंद कषाय होना, संतोषी होना, इससे पुरुष वेद बंधता है। अपन विचार करो कि कौन से परिणामों से अपन ने क्या प्राप्त किया है, अब आगे क्या प्राप्त करना है, सो कौन सा उपाय करना है, ये कर लो। और बहुत अधिक काम वासना की तीव्रता होने से नपुंसक वेद का बंध होता है। ये सब चारित्र मोहनी का मामला है भैया। बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकश्चायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक जाना पड़ता है जी। तो बड़े बड़े अक्षरों में एक बैनर है, सो बनवा लो इसे लगवा भी मैं बहुत, और उसमें मैं भी लिखो और अपने नीचे नाम, मैं ब्रैकेट में नाम लिख दू, मैं फलाना चंद अगर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करूंगा तो नरक जाऊंगा बस, और रोज पढ़ो उसको तो संतोष परिणाम आ जाएंगे। ये उपाय है उसका नरक का। क्या लिखा उसमें, कृति मिथ्यात्व के साथ नरक आयु बनती है, अशिष्ट आचरण करना, शिष्टाचार भी नहीं है, बहुत अधिक मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध, अत्यंत लोभ, दया शून्य परिणाम, दूसरे के दुख में खुद सुख महसूस करना 90%। आप दुखी बने रहो सब संसार आपसे खुश है, और आप अगर खुशी हो तो सबको दुख है। हाँ ये नरक के उपाय हैं। बदबंधन आदि करना, प्राण भूत सत्व जीवों की हिंसा में लगे रहना, प्राणियों का बद्ध करना, झूठ बोलने की आदत होना, दूसरे का धन पैसा हरण करने की और राग द्वेष से युक्त चेष्टाएं करना, बहुत आरंभ, इंद्रियों की दमपटता होना, सब ये बहुत सारी पाप निमित्तक भोजन करना और बैर ऐसा बांध लेना कि छूटे ही नहीं, बहुत क्रूरता होना, ये बहुत से दिए हैं इसमें। तीर्थंकरों की आसाधना करना और मुनि जनों के बीच आपस में फूट पैदा कर देना, जे नरक आयु का बंध का कारण है, लिख के धर लो, जे बहुत चलता है वर्तमान में। हम आए तो भी महाराज जी और तुम आए जी महाराज जी, हम अपने महाराज के गुणगान करें और तुम्हारे महाराज के न करण दे हैं, ओ महाराज जी के भी आपस में कहो और लड़वा देंगे वो। ये कई लोगों का ऐसे ही प्रवृत्ति रहती है, बहुत बहुत देख चुके हम ये चीज। शावक बहुत चतुर रहता है हमारे गुरु जी जो है यही कहते कि शावक से उसकी चतुराई से सावधान रहना।
तुम तो सुनवाई हो जाए।
ये नरक आयु के अपन को किसी की निंदा नहीं कर रहे अपन, न किसी के दोष बता रहे कि अपने परिणाम ऐसे हो सकते भैया, सो अपने होन लगे सो संभाल लो कि अपन को जो नहीं करने हो सकता, अज्ञानतावश अपन ने करी हो अबे तक या कि संस्कारवश करी हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन अब मालूम पड़ गई तो अपन को ऐसा नहीं करना। कई बार तो एक महाराज जी के पास जाके दूसरे की प्रशंसा करके भी और द्वेष पैदा कर देते हैं। हाँ जाने समझियो कि प्रशंसा कर रहे, हाँ वे आपकी इस तरह से ब्याज निंदाए कर रहे। आचार्य जी कहते थे कि एक आचार्य जी के सामने दूसरे आचार्य की प्रशंसा करना इनडायरेक्ट उस आचार्य की निंदा करना है ये। हाँ कि आप में का है उनकी देखो तना जी जी जी, क्या है कौन सा भाव है, हाँ निंदा का भाव है इसमें भी, तो बहुत बहुत परिणाम, बहुत प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। ये सब नरक आयु माया तैरग्यो नस्य, मायाचारी करने से अपन को पशु पर्याय मिलेगी, तिरंज की पर्याय मिलेगी, छल कपट करना, दूसरे को ठगना, धर्म उपदेश में मिथ्या बातें मिला करके प्ररूपण करना, देखो मायाचारी। वर्तमान में सावधानी रखना चाहिए, है तो कुंद कुंद महाराज की किताब, और मैं अपनी तरफ से अपनो भावार्थ भी जोड़ दो ले। अरे वाह, जो तो कुंद कुंद स्वामी की है तो भैया मन वो कुंद कुंद स्वामी की तो प्राकृत भाषा में है, जो तुमने हिंदी में जो कहां से डाल दोगे में, और ऐसा करते हैं लोग मिलावट कर देते हैं तो अपन को दिक्कत लगने लगती है, भैया जो तो कुंद कुंद स्वामी को ग्रंथ है प्रणाम करो, और रूई में हो सकता है। हाँ घर गृहस्थी की फोटो लगाने लगे आजकल, बताओ अब वो मिलावट ही नहीं कहलाएगी, हम तो मिलावट मानते भैया इसको भी। अब हम तो शास्त्र की गद्दी पे रखे, मान लो जो ही रखे हम शास्त्र की गद्दी पे प्रणाम कर रहे, रू में लगी गृहस्थी की फोटो जो हमने छपवाओ है, अब उसे कुंद कुंद को हम स्वामी को का संबंध वो ग्रंथ से, तो हम इसलिए कह रहे कि न छपवाना चाहिए भैया, अपनी फोटो वोटो, क्या फायदा? धर्म ग्रंथ है, अपन नाम भर डाल दो कि भैया इनकी तरफ से न्योछावर, इनकी तरफ से भेंट स्वरूप दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें फोटो इत्यादि लगा देना, या फोटो तो ठीक है और मिथ्या बातें उसमें डाल देना, इससे बचना चाहिए। सील से रहत आचरण करना, ये सब तिरंचायु के बंध के कारण। अब थोड़े से 7 तो बजे गए, अब रहन दो, जल्दी जल्दी करे से कोई फायदा नहीं। आप बताओ, जल्दी कर दें पूरा 10 मिनट में, आराम से कल करेंगे, फिर दूसरी चीज कम कर लेंगे अपन, और कई बार अध्याय में थोड़ा मिल जाता है जहां समय, तो वहां कर लेंगे, है ना, इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें विषय ऐसा है जो थोड़ा सा बार बार अध्ययन करने से एक आध चीज दिमाग में रह जाएगी, हम खुद ही भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए कि ऐसे परिणाम अपने हो रहे हों तो बचें अपन उससे। एक और कर लेते हैं, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखता है वो मनुष्य बनता है। अपना सौभाग्य है कि अपन ने पहले बहुत संतोषी रहे होंगे, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखा होगा, सो अपन मनुष्य हो गए। और स्वभाव मार्दवम चा, जिसके अंदर स्वभाव से ही कोमलता होती है वो भी मनुष्य बनता है। तो अपने जीवन में पहले कोमलता रही होगी, आज अपन विचार करें कि कहीं कठोरता तो नहीं आ गई, नहीं तो आगे जाकर के अपन को फिर ये पर्याय नहीं मिलने वाली है। ऐसा जो है, ये दो और हो गए 18 सूत्र इस तरह से। अब बाकी अपन इनका और कर लेंगे, हाँ करवाएंगे ना, भजन तो करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे
आपका भजन।